आप हैं SBS हिंदी के साथ।
SBS हिंदी पर गौरव वैष्णव के साथ सुनिए शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। विक्टोरिया में पिछले एक दिन में कोविड 19 के 295 मामले सामने आए। भारत पहुंची राफेल विमानों की पहली खेप। और भारत के टेनिस महासंघ के संविधान में बड़ा बदलाव। और अब समाचार विस्तार से। विक्टोरिया में पिछले एक दिन में 295 नए कोविड 19 संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, साथ ही 9 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का कुल आंकड़ा 196 पहुंच गया है। इनमें से 9 में से 7 मौतों का संबंध निजी एज्ड केयर केंद्रों से है। विक्टोरिया में अभी 804 एक्टिव मामले एज्ड केयर से जुड़े हुए हैं, जबकि 502 मामले स्वास्थ्य कर्मियों से। राज्य और केंद्र के दखल के बाद अब एज्ड केयर के संक्रमित निवासियों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। प्रीमियर डेनियल एंड्रयूज ने एक बार फिर विक्टोरिया के लोगों को याद दिलाया है कि वो अगर बीमार महसूस करते हैं तो अपने घरों में ही रहें।
That's what I'm asking on behalf of all Victorian families and all Victorian workers, and particularly those in Victoria who, if we don't pull this up, will become infected, a significant percentage of whom will need critical care, they'll become gravely unwell, and then a percentage of them will pass away. For them, for all of us, you just can't go to work if you've got symptoms. If we all want to be past this, if we all want to get back to COVID normal, then it's a must, an absolute must.
क्वींसलैंड की प्रीमियर एनास्टासिया प्लाजुक ने कहा है कि राज्य के लिए अगले 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ये बात 2 लड़कों के संपर्क सूत्र तलाशने के बाबत कही है। राज्य की पुलिस 2 ऐसे किशोरों के बारे में पता लगा रही है जिन्होंने कि विक्टोरिया से आने के बाद क्वींसलैंड में आवश्यक एकांतवास की अवहेलना की है। इसके साथ ही प्रीमियर ने पूरे ग्रेटर सिडनी के लिए राज्य की सीमाएं बंद करने की घोषणा की है। सिडनी में नए मामलों को देखते हुए ये प्रतिबंध शनिवार 1 अगस्त से लागू होंगे। सुश्री प्लाजुक ने कहा कि वो नहीं मानती हैं कि ये अनावश्यक प्रतिक्रिया है।
And what is extremely disappointing is that these two people went to Victoria. That's what they did. And now we have to act swiftly and quickly. Let me assure Queenslanders that we have been preparing for these scenarios. We have done this before and we will do it again. But because of the negligent actions of these two, we now have to do a lot of contact tracing and it is going to be an inconvenience to many people.
प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि मेलबर्न में और अधिक एज्ड केयर में रहने वाले बुजुर्गों को वहां से निकालकर पब्लिक और निजी अस्पतालों में रखा जाएगा। विक्टोरिया में कर्मचारियों की कमी से निपटने के लिए अतिरिक्त नर्सों और सेनाओं के चिकित्सकीय कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। खबर है कि विक्टोरिया में अब तक करीब 750 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं और करीब 49 बुजुर्ग लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 5 में से पहली ऑस्ट्रेलियन मेडिकल असिस्टेंस टीम गुरुवार को मेलबर्न पहुंच जाएगी।
They are teams of 7. They act as a first responder, if you like, into places that are going through a critical response need, and to stabilise the situation and to provide not just the medical and clinical support, but the leadership, medical leadership that is required in those critical situations.
न्यू साउथ वेल्स में 19 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस के प्रतिबंधों को जिम तक बढ़ाया जा रहा है। इन नए मामलों में से 10 वेदरिल पार्क के थाइरॉक रेस्टोरेंट से जुड़े हैं, जिसके बाद यहां से फैला संक्रमण अब 85 लोगों तक पहुंच गया है। 2 और मामलों के सामने आने के बाद अब कुल 7 मामले इसके पॉट्स पॉइंट के साथी होटल से भी जुड़ गए हैं। प्रीमियर ग्लेडिस बेरजैकलियन ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में लोगों को सही काम करने की ज़रूरत है।
New South Wales is holding the line, but as I've been saying for a number of weeks, we are at a very critical stage of the pandemic. We have the opportunity to get through the next few weeks and continue on our strong path. Or if we don't all do the right thing, we will go down the path of having more cases and then having to consider additional measures to reduce those cases. And we don't want to be in that position.
चीन के दबाव के आगे खड़े होने के लिए अमेरिका ने मॉरिसन सरकार की तारीफ की है। वाशिंगटन में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मंत्री स्तरीय बातचीत के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने ये टिप्पणी की है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिस पाइन और रक्षा मंत्री लिंडा रेनल्ड्स के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री पोम्पियो ने इस बारे में कहा,
The United States commends the Morrison government for standing up for democratic values and the rule of law, despite intense, continued, coercive pressure from the Chinese Communist Party to bow to Beijing's wishes.
और अब खबरें भारत से। फ्रांस से राफेल विमानों की पहली खेप आज भारत पहुंच रही है। सोमवार को इन 5 विमानों ने फ्रांस से उड़ान भरी थी और आज ये भारत में अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। खबर है कि इनमें यूएई के आसमान में फ्रांसीसी रिफ्यूलिंग टैंकर से हवा में ईंधन भरा गया है। विमान के पहुंचने के खबर के बाद अंबाला में सुरक्षा बढ़ाई गई है और विमानों के पहुंचने पर उसकी फोटोग्राफी पर रोक लगाई गई है। भारत और फ्रांस के बीच हुए एक करार के तहत फ्रांस भारत को 36 राफेल फाइटर जेट की आपूर्ति करेगा। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने इन जहाजों को बेहतरीन बताया।
I'm very proud to see the first batch of Rafale reaching Indian soil, and I'm very proud because these planes, as you know, are outstanding, and I understand that the technicians and the pilot have marvelously completed their training in Mérignac in France, and they are totally operational to use.
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उन खबरों को भ्रामक बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि नए बनने वाले राम मंदिर के नीचे किसी तरह का टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि केवल ट्रस्ट के आधिकारिक लोगों के बयान को ही सही समझा जाए।
समाचार आ रहा है कि 5 अगस्त को कोई टाइम कैप्सूल जमीन के नीचे रखा जाएगा, यह समाचार गलत है, मनगढ़ंत है। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जब कोई अधिकृत वक्तव्य जाए उसी को आप सही माने।
आपको बता दें कि इससे पहले 27 जुलाई को ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने कहा था कि भविष्य में किसी तरह का कोई विवाद ना हो इसलिए मंदिर के 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि वो किस हैसियत से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक धर्म को मानने के नाते उन्हें व्यक्तिगत तौर पर किसी कार्यक्रम में शामिल होने का हक है, लेकिन अगर वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर शामिल हो रहे हैं तो इससे ये संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री एक समुदाय का पक्ष ले रहे हैं।
यकीनन हर प्रधानमंत्री को अगर वो किसी मजहब को मानता है तो उसको उस पर मजहब पे चलने का पूरा इख्तियार है, मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है, प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है, और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहसियत प्रधानमंत्री तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं।
राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत को समन भेजा है। ईडी ने यह समन कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए जारी किया है और अग्रसेन गहलोत को कल यानी बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने अग्रसेन गहलोत को यह समन 2007-2009 के दौरान उर्वरक निर्यात घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के लिए जारी किया है। बीते 22 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय ने इस सिलसिले में उनकी संपत्तियों की तलाशी भी ली थी। और अब डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.31 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 71 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। भारत के टेनिस महासंघ अपने संविधान में एक बड़ा संशोधन कर रहा है, जिसके तहत आजीवन अध्यक्ष और आजीवन उपाध्यक्ष के पद को हटा दिया गया है। साथ ही मतदान की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। AITA ने संयुक्त सचिवों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 कर दी है। सोमवार को हुई आम सभा की ऑनलाइन बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में AFL की, जहां पर अगले 20 दिनों में 33 गेम खेले जाएंगे। शुरुआत आज यानी बुधवार रात क्वींसलैंड में वेस्टर्न बुलडॉग्स और रिचमंड टाइगर्स के बीच मुकाबले से होगी। ये मैच क्वींसलैंड के अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में भी खेले जाएंगे। अगले 16 दिनों में एडिलेड क्रोज को 4 गेम खेलने हैं, जिसकी शुरुआत इस शनिवार को नॉर्थ मेलबर्न के खिलाफ मैच से होगी। क्रोज के डिफेंडर फिशर मैकेसे ने कहा कि उनकी टीम आने वाले व्यस्त कार्यक्रम के लिए तैयार है।
I think it'll be good for us. Yeah, we've spoken a lot about what we can improve on, so those sort of tight turnarounds, we'll be able to sort of rectify it quicker. So yeah, that's probably the main focus. We're just really excited for it, and we think it'll be good for us.
और अब डालते हैं नजर कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में ज्यादातर धूप रहने के आसार हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान 20 डिग्री जबकि न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में सुबह के कोहरे के बाद दिनभर धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 16 डिग्री न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में भी बादलों की आवाजाही रह सकती है। अधिकतम तापमान 14 डिग्री न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देश की राजधानी कैनबरा में धूप की संभावना है। अधिकतम तापमान 15 डिग्री न्यूनतम 0 डिग्री रह सकता है। सिडनी में आंशिक तौर पर बादल रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 18 डिग्री न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्रिस्बेन में धूप खिली रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। डार्विन में भी धूप रहने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 32 डिग्री न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में बादल छाए रहने का अनुमान है। वहीं दोपहर बाद यहाँ आंधी की संभावना है। यहाँ अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचारों में आज इतना ही।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहाँ आप podcast सुनते हैं वहाँ हम हैं।